हमारे प्रति भी इसकी मित्रता है। उनको बुलाया, देखो चाचा जी हम तो आपके आश्रय हैं, आप ही के बल पर मैं हूं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे परम हितैषी हैं, हमारा कल्याण ही इसमें आप कुछ हमारी सहायता करें। उन्होंने कोई चिंता की बात नहीं, मैं तो तुम्हारा ही हूं, तुम्हारी है कृष्ण के परम भक्त, किंतु सोच रहे हैं कि यदि कंस को पता लग गया जब मैं विपक्ष काम करूं मुझे मारपीट करके भगा देगा या मार डालेगा और हमारी समस्त गायें और जमीन और राज्य सब पूर्ति करा लेगा, इसलिए अभी इसका बंद करके रहना चाहिए। मुझे ठीक विश्वास है कि कृष्ण जरूर आएंगे और उसको मार करके सब करेंगे, उस समय में फिर प्रकट होकर विपक्ष में, इसलिए जैसा कहता है वैसे ऊपर से मान लो किंतु भीतर से नहीं श्रद्धापूर्वक। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जैसा कहते हो वैसे बतलाओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं। अच्छा वो हमको ऐसा लगता है कि वो नंद का लड़का नहीं है, वो है वसुदेव का है। ये दोनों लड़के हैं वसुदेव के लड़के हैं, किसी प्रकार से वहां पर चोरी से भगा दिए गए और हमको इसका पता नहीं लगा, जो वहां जाता लौट करके नहीं आता। आप किसी प्रकार से उसे कहा सुन करके किसी प्रकार से छल बहाना करा करके उसे जल्दी से यहाँ ले आओ। कहना जैसे शिव जी का धनुष यज्ञ हो रहा है उसमें नंद महाराज जी को बुलाया गया है, नंद महाराज जी खूब आदर के साथ में निमंत्रण देकर के उनको बुलाया और कहना जैसे तुम्हारे लड़के खेल कूद में बड़े तेज हैं, सुनते हैं, दौड़ धूप में अच्छे हैं, शरीर का गठन भी बड़ा बलवान है और तरह तरह के ये सब खेल कूद भी जानते हैं, उनको भी साथ लाए, हमारी भी इच्छा है उन बच्चों को देखने की और यहाँ पर रह करके एक दो दिन फिर जरूर ले आना। तो मैं जरूर ले आऊंगा, सोचा क्या आज हमारा परम सौभाग्य, इसी बहाने से हम नंदालय में जाकर के अपने परम इष्ट देव कृष्ण का मैं दर्शन करो, क्या हमें चाचा कहेंगे वो कहीं और मेरी गोदी में बैठ जाएंगे और मैं उन्हें सहलाऊंगा और उनके चरणों की धूली मुझे मेरे सिर पर लग जाएगी और मैं भी उनको स्नेह करूंगा, कहीं हमें दर्शन न दे तो फिर क्या होगा। ऐसे ऐसे सोचते सोचते भाव भी कोई दुष्ट के कहने से किसी भी कारण से हमको एक सुयोग मिल गया, जैसे सुदामा जी ने अपनी स्त्री के लिए कहा लाभम केवलम, लाभ केवल क्या है, हमको इसलिए नहीं जाना है कि हमको खाना पीना भोजन नहीं मिलता है कुछ ऐश्वर्य वहां से ले आना है, लाभ में परम लाभ है जैसे उनके दर्शन मिल जाएंगे तो हमारे लिए भी परम लाभ में यही लाभ होगा कि कृष्णचंद्र के दर्शन और प्रेम के साथ में हमारी गोदी में बैठ करके चचा जी चचा जी कुशल तो है ये तो पूछ लेंगे, मैं उनके चरण में लूट गया और क्या हमें वो क्षमा नहीं करेंगे, क्या वो अंतर्यामी नहीं है ये जानेंगे ये कृष्ण के ही है, होने पर भी हमारा परम भगवत भक्त है ये नहीं जानेंगे कृष्ण, वो त्रिकालदर्शी हैं जरूर जानेंगे और बड़े दयालु हैं। ऐसे चिंता करते 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 अच्छा मैं जाऊंगा, बस उन्होंने सोने का रथ अपना वाला दिया गया, हमारा रथ ये खुद ले जाएगा, हमारा सारथी जाएगा, आप जाइए और कल तक इसको जरूर ले आए, बस अपना रथ जो किसी को नहीं देता था वो सोने का रथ अपना सारथी देकर के अपने हाथों से उनको बैठा करके बड़े सम्मान के साथ उनको भेज दिया। चलेंगे जब नंदगांव की सीमा में पहुंचे तो कृष्ण के चरण कमल जो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं जिसमें कि शंख चक्र और कलश ध्वज ब्रजा अंकुश इत्यादि हैं देख करके और एकदम लौट गए और अपने कभी बस्तक्षल में लगाएं और कभी सिर पर लें और कभी अपनी आंखों पर चढ़ाएं और कभी उसी में लोट पोट कर लें। वो आज मैं धन्य हो गया, हमारा शरीर भी धन्य हो गया, आंखें भी धन्य हो गई, हमारा कोटि कोटि जन्मों का सौभाग्य था जो भगवान के चरण कमलों का दर्शन मानो साक्षात कृष्ण ही मिले, इस प्रकार से भाव में गदगद हो गया और कितने तरह का श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। पहुंचे वहां हम लोग जाते हैं नंदगांव में, हम लोग जाते हैं वहाँ काम्यवन में, वहाँ पर जब जाते हैं नंद उस पहाड़ी के ऊपर में तब तो बड़े विक्रम से जाते हैं, यहाँ से किराया दे दिया 7-8 रुपये लगते हैं कि 9 रुपये दे करके जाते हैं, और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए फोड़ लगा देते हैं, बड़े आनंद से हंसते कूदते बस फिरते हुए और पैर तोड़ते हुए चले जाते हैं। और जा करके देखा, देख करके ऐसे देख लिया, अरे प्रणाम तो करो, ऐसा लगा दिया, हो गया सर, चलो चलो हो गया हो गया। और उद्धव जी उस चरण कमल को देख करके क्या करते, गदगद हो, भाव शुद्धि बिना नहीं होगा, कोटि कोटि जन्मों के संस्कार पूरे हमारे पड़ेंगे, इसलिए हम लोगों का नहीं होगा। आज वही अपूर्व होते, उद्धव होते, नारद जी होते, हमारे रूप सनातन जी होते, रघुनाथ दास गोस्वामी होते, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और गुरु पार्षद जी होते, आज देख करके आंखों से आंसुओं की धारा गिरने और हम लोगों को कोई भाव ही नहीं आता है। वही तो चरण कमल, वही जगन्नाथ जी हैं ने? जो चैतन्य महाप्रभु भाविष्ट हो गए, और हम लोग जाते हैं तो निकट से जब नहीं होता है तो हम कहते हैं पंडा जी जरा हम निकट में जाएंगे, पर 5 रुपया लगेगा, ठीक है हम देने के लिए तैयार, 5 रुपया दे दिए, चलो चरण छुला देंगे। निकट में गए देखा विराट, दूर से तो छोटा दिखता है, जब निकट गए तो चरण छूने के लिए ले गया, चरण देखा तो खूब कड़ा, लकड़ी तो है और क्या, बड़ी बड़ी आँख रंग रखी है। पंडित ने हाथ पकड़ लिया, आप वहाँ पर प्रणामी 5 रुपये का नोट दे रहे हैं, वो छेद होता है उसमें गिरा दे रही, और उसने हाथ पकड़ लिया तो इत्तदान हो जाए, आप छोड़ा नहीं, आपको सब कुछ सामर्थ्य है, बड़े बड़े पहलवानों लोगों को भी वो नहीं, वो उसमें गिरवा करके ही छोड़ेंगे, आप कहेंगे जी चरण में लेंगे तो वो सरकार का हो जाएगा, और छेद में देंगे तो बक्से में जाएगा, वो सब ठाकुर जी का अपना संपत्ति हो जाती है, और वो गवर्नमेंट ले लेती है, और जो बाहर में उनके हाथ में आ गया तो उनका हो गया माल, इसे गिराने नहीं देंगे उसमें पकड़ने, और उस समय आप 1000 छोड़ेंगे, आज यदि बेसी करेंगे तो हाथ तोड़ देंगे, बस याद आ जाएगी छठी का दूध का याद आ जाएगा, बस दर्शन हो गया, और वहां से लेकर के क्या है, ये बड़े बदमाश पंडे गया था मैं देखने के लिए, अब ठाकुर जी का दिखा ऐसे बस लकड़ी का बना हुआ, कोई कारीगरी में ऊपर से तो कारीगरी दिखती है बाहर दूर से, अब देख करके आ जाओ, अब हो गया जीवन में सताती हुई, इसलिए दूर से देखना चाहिए, महाप्रभु जैसा दूर से देखते थे भगवत स्वरूप में, जिसका भाव नहीं है ऐसा ही हो, इसलिए कोई भी गौड़ीय वैष्णव जो इस तत्व को जानता है कभी भी निकट नहीं जाएगा, बड़ी दूर से महाप्रभु के भाव के अनुसार उनको देखता है, भगवान को देखता है, अन्य तो वही लकड़ी बुद्धि होगी और साधारण बुद्धि होकर के, इसलिए वैष्णवों को संतों को ठाकुर जी को श्री विग्रह वहां पर वृंदावन में अभी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन है, अभी भी लीलाएं करते हैं, और हम लोग जाते हैं तो कोई दर्शन का कोई जरूरत है, दर्शन से कोई भाव ही नहीं आता, क्यों नहीं आता, भाव नहीं है विष्णु, ये सब संतों की कृपा से होता है, यदि ऐसे संत लोग हैं उनकी यदि कृपा पाई जाए उनकी सेवा की जाए तब ये होकर होगा, इसलिए कहते हैं जो वो भूमि है कौन सी, मथ वृंदावन की वो प्रेम भूमि है, और वहाँ के परिकर भी बड़े प्रेमी हैं, तो कृष्ण को क्या जरूरत है मथुरापुरी जाने का, और वहाँ नहीं ये अक्रूर जी लेकर के जा रहे हैं, अक्रूर जी वहाँ पर पहुंचे, शाम हो गई, नंद बाबा से मिले, रथ को खड़ा कर दिया, सुंदर रथ आया है, तो रथ कहाँ से आया, मथुरा से आया, आओ राजनगरी से आई है, राजधानी से आया है, भैया ये किसने भेजा, किसने भेजा, कोई किसी को भी पता नहीं है, किसी को बतलाया नहीं गया है, घर में अंदर में घुस गए, लोगों ले गए नंद बाबा को, नंद बाबा जी भाई के समान ये मिले, मिलने पर कुशल से पूछा जे कहो हमारे वसुदेव और देवकी हमारे भाई और उनके क्या लगे हुए, भौजी उनके छोटे थे, भाई छोटे भाई की किस्ती वो सब कैसी, और हमारे ज्ञाति बंधु जो हैं हमारे कौन कैसे हैं, नंद बाबा के पिताजी परजन्य और उनके पिताजी थे देवमीर, और इधर वसुदेव जी के पिताजी सुरसेन, सुरसेन के पिताजी का नाम भी वही देवमीर। देवमीर के दो संतान सुरसेन और परजन्य, परजन्य के हुए नंद बाबा और सुरसेन के हुए अब उन्हीं से उनका परिवार फैला हुआ है। इसलिए ये सब भाई ज्ञाति कुटुंबी है एक ही। हमारा भैया ठीक है, वसुदेव जी इनको बड़ा भाई समझ करके बड़ा आदर करते थे, और नंद जी का स्वभाव भी वैसे परम उदार था। ओहो, कंस ने उनको जेल में बंद किया, बड़ा तंग किया, ये कह करके रोने लगे थे। और ये काल की गति समझी नहीं जाए, आज काल की गति कैसी है। मैं आनंद से यहाँ पर हूँ और हमारा भाई वहां पर इस प्रकार से, मैं कुछ भी उनकी सहायता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी भाई बड़ा संकट में पड़ा है, अब तो अपमान की जीवन वो जी रहा है। कभी कंस आता है पैरों से ठुकराता है, कभी कहता है कल मार दूंगा जान से, तुमने बच्चे को कहां छिपा दिया, आठवां गर्भ का जो लड़का था वो कहां गया, लड़की तो नहीं है मैं ठीक जानता, तू बतला, नहीं बतला कल तक देता हूं, कल तुमको मारूंगा, तुमको पटक देंगे पत्थर के ऊपर में, और गाली गलौज करता है तरह तरह, मर जाना ही अच्छा है मैं समझता हूँ। इस प्रकार से यदि आपको आपका भाई है, आपके लड़के को यदि दीजिए, उसने मंगवाया है आपके लड़कों को, ये लड़के वहाँ पर जाएंगे यज्ञ धनुष लेकर के चले जाएंगे और आप भी जाइए साथ में, इसलिए निमंत्रण आपको दिया है। मैं तो समझता हूँ कि आपको वहाँ चलना अच्छा है, और उसी धनुष यज्ञ में आपके लड़के बड़े विक्रमशाली हैं, युद्ध मार डालेंगे उसको और उसके परिकर, इसलिए हमारे समझ से चलना अच्छा है। ठीक, कुछ नहीं हो इतने में देखा जैसे ये तो भेजेंगे नहीं। थोड़ी देर के बाद में अकेले रह गए वो कृष्ण और बलदेव जी आए, या जहाँ थे वहीं पर पहुंच गए, और बच्चों को बड़े प्यार से चाचा जी उन्होंने कहना आरंभ किया, और तो द्रवित हो गए। बेटा तुमसे एक बात कहूं, और सब बातें होने के बाद खिलाया पिलाया गया, अब सोने जा रहे हैं, तो बच्चे उनके पास में बैठ गए चाचा जी के पास, बतलाने लगे। देखो एक गोपनीय बात तुमसे, बता किसी से मैंने आज तक बतलाया नहीं तुमसे, तुम दोनों ये समझते हो कि नंद बाबा के हम लड़के, तुम लोग नंद बाबा के ठीक लड़के नहीं, तुम लोग तो दोनों एक तो रोहिणी के गर्भ से, ये तो पता ही है जैसे वसुदेव जी के गृहणी हैं उनके बलदेव, और तुम भी नंद बाबा के लड़के और यशोदा जी के नहीं, तुम वसुदेव और देवकी के लड़के हो, जिसमें जन्म हुआ और उस समय डर के मारे तुमको यहाँ पर ले आए, और लड़की जो उनकी थी उन वहाँ पर ले गए, तुम उनके लड़के नहीं, और तुम्हारे लिए ही जो कुछ उनके ऊपर में विपत्ति है, क्योंकि देववाणी ने कहा था आठवां गर्भ के लड़के से उसकी मुक्ति होगी, मैं जानता हूँ कि तुम ही आठवां गर्भ के हैं, तो तुम ही उसे मारो, और तुम्हारी माता के ऊपर में पिता के ऊपर में कितना अत्याचार वो करता है, कल पत्थर रख दिया छाती पर, दस से मस नहीं हूँ, और कभी तलवार दिखलाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, गाली गलौज करता है, अपमान करता है, हम समझते हैं कि उससे उनकी मृत्यु हो जाती थी, इस तरह से उनको प्रोत्साहन देकर के किसी प्रकार से चले। बलदेव जी की आंखें लाल हो गई, अरे दुष्ट ऐसा करता है, कृष्ण को भी बड़ा क्रोध हुआ, तो जो हमारे पिताजी के मित्र को ऐसा करता है, और ये हमसे किंतु ऐसा क्यों करते हैं, आज तक तो मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं है, मैं वसुदेव देवकी का लड़का हूँ, मैं तो नंद मैया नंद और पिता और यशोदा मैया का लड़का हूँ, किंतु ये तो उनके ही कार्य, खैर उसमें कोई बात नहीं, हमारे पिता ही जो तो लगते हैं, पिताजी के भाई हैं और छोटे भाई हैं, कोई भी बात नहीं, वैसा उसी लिए प्यार से शायद कह रहे हैं, उसको जरूर मार जितने कुछ अच्छा होता है, और ऐसे ही खूब उनको उत्साह देते हैं, कहते भाई कल नहीं उनको आज ही मारना चाहिए, और नहीं तो बड़ा कौन कर रहे हैं, आज कितना दिन हो गया, 8-9 वर्ष हो गया, और ऐसी प्रकार से गोपन करता है, तुम्हारे समस्त भाइयों को जो पीछे से हुए सबको उसने पटक पटक करके मार डाला, एक को भी नहीं छोड़ा, अंत में तुम किसी प्रकार से बच गए, इसलिए जरूर चल। उनको ऐसा प्रोत्साहित किया, वीर रस जगाया, कि वो पिताजी के पास में आए, पिताजी यदि आप कंस के पास में नहीं जाते हैं तो क्या होगा, वो हम सबको तंग करेगा, आपको भी तंग करेगा और प्रदेशवासियों को उजाड़ देगा, इसलिए चलना है। और चल करके उसका यज्ञ देख करके हम आपके साथ ही में लौट आएंगे पिताजी, आप किसी प्रकार से हम लोगों को निर्देश आदेश दे दिए। पिताजी आदेश नहीं दिया, घर में गए, कहाँ गृहिणी के पास जो सुधार बोले जे देखो एक बड़ा भारी संकट था, रामचंद्र जी को भी और लक्ष्मण जी को भी विश्वामित्र के साथ में जाना पड़ा, हमारा लाल तो है ठीक है किंतु हमारे भाई के ऊपर में बड़ा भारी संकट आया है, इसलिए उसकी रक्षा करना भी हमारा परम धर्म है और हमें बुलाया है, यदि हम नहीं जाते हैं तभी कंस और कृष्ण और बलदेव को वो मारने की चेष्टा करेगा, वहीं पर भेज देगा, इसलिए हम समझते हैं कि हम लोगों का जाना ही उचित है, तुम आदेश दे दो। अब वो तो बिगड़ गई, गाली गलौज करने लग गई, बुद्धि शुद्धि कुछ नहीं, बच्चे को ले जाएगा फिर बच्चे लौटेंगे नहीं, कहीं कंस ने मार डाला तो फिर क्या होगा, तरह तरह से रोने लग गई, स्त्रियों का तो अंतिम अस्त्र है रोना, रोने की गियाने लग गई, बहुत तरह से कष्ट करके किसी प्रकार से उनको राजी किया, प्रतिज्ञा मैं करता हूं कि कल तो नहीं परसों जरूर मैं उसको लेकर के साथ में आऊंगा, नहीं तो मैं मुख नहीं दिखलाऊंगा, ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करने लगे। खैर उन्होंने आदेश दे दिया, ब्रज में हवा की तरफ में वो फैल गई बात और सब लोग यशोदा जी के घर, ये यशोदा जी भी पागल हो गई, ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया, इनको भी पता नहीं है कि प्रकाश नंद और यशोदा जी को वो तरह तरह से ऊपरी सीधी बातें सब करेंगे, गोपियां तो किसी प्रकार से जाने नहीं देंगे, कृष्ण उनको समझाने गए तो उनको अपने पास रख दिया, तो उद्धव जी रथ से उतर करके बलदेव जी को रथ पर रख करके सवेरे रथ सजा दिया गया और गोपियां ने उनको सब रथों को पकड़ लिया, बाप दो चारों तरफ से घेर करके बस वहीं पर खड़ी हो गई, कोई सो गई चक्के के नीचे, कोई पूछ कोई पूछ। उस समय उद्धव जी देखा जी सर रथ कैसे ले चले, तो कृष्ण ने वहीं पर उनको रोक दिया और अकेले ही उतर करके और चले गए कहां जहां गोपियां थी, समझाने लगे कल नहीं तो परसों जरूर आऊंगा, मुझे थोड़ा सा आदेश दे। अकरू ने देखा जैसे कृष्ण उनकी बातों में लटपटने लग गए और देर हो गई और जल्दी से चलना है, वो अकरू गए, अकरू समझाने लगे गोपी जैसे ये अरे भाई वसुदेव जी के और उनके लड़के हैं, ये तो कुछ दिन के लिए आए थे छिप करके किसी काम करने के लिए, अब वो काम पूरा हो गया है और नहीं तो इनके माता पिता को वो मार डालेगा, तुम उनको जाने दो फिर आ जाएगा, यार झूठा लबार तू आया, ये देवकी वसुदेव का कब से लड़का हो गया, हम तो ब्रज में कितने दिनों से हैं, हम तो सब समय से जानते हैं, बूढ़ी स्त्री आ गई और उसको गाली गलौज करने लग गई, हम विश्वास तुम्हारी बात में, तुम झूठा और मक्कार है। फिर उन्होंने कहा अच्छा बतलाओ कृष्ण के नहीं जाने से वो माता पिता दो आदमी मरेंगे अधिक से अधिक, अब ब्रज से यदि चला जाएगा तो यहाँ कितने लोग मरेंगे, सब लोग मर जाएंगे, तो इस सब का हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर में लगेगा, और नहीं तो घर में दो आदमी मरे तो क्या कुछ भी बात नहीं है, इधर तो ब्रज का ब्रज सब खत्म हो जाए, नहीं ले सके। अंत में कृष्ण ने बार बार प्रतिज्ञा करके तो किसी प्रकार से वो रथ पर चढ़े, तब अपने इसलिए अपने मन से नहीं गए, वो भार हरण करने के नाते और कुछ दिनों के लिए गए। फिर वो कहते हैं मथुरा से तो जाते हैं यहाँ ब्रज से मथुरा जाते हैं और कभी कभी कुछ दिन रहते हैं, किंतु अप्रकट ब्रज में ब्रज तो है मथुरा तो है, एक प्रकट लीला होती है और एक अप्रकट लीला होती है, प्रकट लीला जब कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में सप्तम मन्वंतर में द्वापर युग के अंत में जब आते हैं और सब लीला प्राकृत लोगों को भी वो दिखलाई पड़ते हैं तो उसको कहते हैं प्रकट लीला, जो अभी कुछ दिन 5000 वर्ष पहले हुई थी, अभी भी कृष्ण की लीलाएं ब्रज में मथुरा में हो रही हैं, किंतु हम लोग नहीं देख पाते, वैसे भक्त होंगे तो वो देखेंगे। तो दो प्रकार की लीला, एक प्रकट और एक अप्रकट। अप्रकट लीला सब समय गोलोक वृंदावन में होती है और प्रकट लीला गोकुल ब्रज में होती है, समझ रहे हैं ना? गोकुल उसी का नाम है। तो गोकुल में प्रकट लीला होती है कुछ समय के लिए, और जो नित्य लीला है जो सब समय होती है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती है, उस लीला को अप्रकट करते हैं। तो अप्रकट लीला यहाँ भी वहां भी दोनों में वो चलती है, किंतु हम लोग देख नहीं पाते हैं, साधन करने के बाद उस लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रकट लीला में कृष्ण जो प्रकट रूप में जो विहार करते हैं उसको साधक लोग भी, सिद्ध लोग भी, साधारण मनुष्य भी उन लीलाओं को देखते हैं। कोई कोई इसमें भगवान मानते हैं, कोई भगवान नहीं मानते हैं, कोई प्रेम से उनका सेवा करते हैं। जैसे हम अपने तात्पर्य प्रेम के तात्पर्य के अनुसार में, भक्ति के तात्पर्य के अनुसार में उनका दर्शन और सेवन इत्यादि करते हैं। बद्ध जीव हम लोग प्रकट अप्रकट लीला नहीं देख सकते। अप्रकट लीला में कृष्ण से गोपियों का वियोग नहीं होता, यदि होता भी है तो क्षण मात्र के लिए, जैसे कुंजों में छिप जाते हैं। यहाँ का 100 वर्ष कितना है, वहां के लिए एक क्षण भी नहीं है, क्षण भी नहीं है। इसलिए वहां पर वियोग नहीं है, वियोग केवल प्रकट लीला में ऐसा दिखता है। वहां पर वियोग की भी भावना है तो 3 महीने के लिए केवल होता है, उसमें भी गोपियों से सब सम्मिलन की स्थिति रहती है। इसलिए वहां पर ऐसा विरह वियोग इस तरह का नहीं, वियोग केवल भावना का है। इस चीज को अच्छी तरह से पीछे समझाएंगे न। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण नित्य काल ही वृंदावन में गोकुल में रहते हैं, कभी कभी मथुरा जाते हैं, वो भी स्वप्न में जाते हैं, चले गए हैं ऐसा मालूम होता है। नित्य भी वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में नित्य निवास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं और वहीं सुख से रहते हैं। मथुरा 1 मिनट के लिए कभी चले गए नहीं। इसलिए सबसे प्यारी भूमि वृंदावन है। इसलिए वृंदावन को छोड़कर वृंदावनम प्रत्यज पाद एकम न गच्छति, कभी भी वो नहीं जाए। इसलिए वृंदावन का महिमा गोप इससे द्वारका और मथुरा से हजारों गुना है, और की तो बात है वैकुंठ इससे भी अधिक है। इसलिए ये गोपनीय चीजें मैं तुमसे बतला रहा हूँ, बतलाने का तात्पर्य क्या उसको बतलाएंगे, जैसे इसको वहीं पर जाने का भाव हो गया है, इसलिए इसकी दुर्लभ महिमा का बतला रहे हैं अब अगले दिन।
हम लोग आज 13/6/87 को बृहद भगवतामृत ग्रंथ से श्री नारायण महाराज के द्वारा ये प्रवचन सुन रहे हैं। ये प्रवचन श्री नारद ऋषि द्वारका में गोप कुमार को ब्रज की महिमा बतला रहे हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
यदि गोपियाँ नहीं रहे हैं तो कृष्ण की महिमा भी नहीं रहे, गोपियों के वजह से ही उनकी इतनी महिमा है। उद्धव जी ने जो कहा वो तो युक्ति युक्त कहा, उन्होंने क्या महिमा वर्णन किया, उनके चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु लता इत्यादि के रूप में जन्म लेना चाहे, और एक अक्रूर व्यक्ति कृष्ण के पितृव्य माने चचा जी और शुष्क हृदय वाले शुद्ध भक्ति मान नहीं, और वृंदावन के प्रति कुछ अपराध युक्त हैं, गोकुल के चरण में कुछ अपराध किया था, कृष्ण कुमार से लेकर के बाहर कर लिया, मथुरा लेकर के चले आए, तो ऐसे व्यक्ति भी बड़े महिमाशाली बन गए। जो कैसे बन गए, उन्होंने जैसे भी वो अनजान में भी उन गोपियों की बड़ी महिमा का गान करता, उनके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल रही जिसमें कि गोपियों की महिमा बड़ी सूचित होती है और उसी कारण से भगवान उनको प्रसन्न कुछ हो गए, भूल से भी अनजान में भी निकल गया उनके मुख से कुछ ऐसी बात, इसलिए आज उनकी ऐसी महिमा है। उसी का ये श्रीमद् भागवत में एक श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया, सफल पुत्र भगवत प्रतिज्ञ निरस ज्ञान विशुष्क चेता वृद्धो दयाद्र अंतरता विहीन कंसस्य दौत्ये अधिरतो प्रदेज्ञा। सफल उनके पिताजी का नाम अक्रूर जी है, उनके पुत्र ये अक्रूर, ये वसुदेव जी के चचेरे भाई ये बनते चचेरे भाई, ये ब्रजनों के प्रति अपराधी है, इनके इच्छा के विपरीत कृष्ण को ब्रज से निकाल करके मथुरा में ले आए। तो जिस समय में वो ब्रज में आ रहे हैं, कंस ने उनको भेजा दूत साथ के रूप में, कृष्ण और बलदेव को छल बल कपट से लाने के लिए। तो उस समय में कारण यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कंस तो असुर है दुष्ट व्यक्ति, किंतु हमारे लिए तो ये बड़ा हितैषी बन गया है, हमको कृष्ण को और बलदेव जी को लाने के लिए भेजा, जैसे तैसे कृष्ण का बलदेव जी के तो दर्शन तो मुझे मिल जाएंगे, लाभ में यही मेरे लिए लाभ परम लाभ है सोच रहे हैं। और उस समय कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, तो वो छल बल कपट से चातुरी से ब्रज से ला रहे हैं, ये उनकी धृष्टता है कि उनके प्रियतम को प्रियतमाओं से और ब्रजवालों से ब्रजवासियों से उनको अलग करके चातुरी करके और कौशल करके वो ले जा रहे हैं। कृष्ण की भी जाने की इच्छा नहीं है, गोपियों की छोड़ने की भी इच्छा नहीं, और वो बीच से मां गुरु का कार्य करके और ले जाने की चेष्टा कर। तो उस समय में वो कहते हैं कि वो ब्रज की महिमा और गोपियों की महिमा समझने के अयोग्य हैं, क्यों कि एक तो कृष्ण के पितृव्य हैं, पितृव्य माने चचा जी, कृष्ण और गोपियों के मध्य में जो संबंध है और उनके जो भाव हैं, उन भावों में उनका प्रवेश अधिकार नहीं है, क्योंकि वो चाचा हैं पिता हैं, इसलिए वो सबकी कल्पना नहीं कर सकते, एक तो ये। दूसरी बात, भक्ति शून्य निरस ज्ञान के प्रभाव से उनका चित्त शुष्क है, निरस ज्ञान उनके और अब वार्धक्य माने केश पक गए हैं उनके, तो अब वार्धक्य स्थिति आ गई, अब कुछ वार्धक्य के कारण अपरसिकता भी नहीं है उनके अंदर, जब रस की बातों को समझें, सखाओं के रस को और माता पिता के वात्सल्य रस को और गोपियों के इस रस को कुछ समझें, अपृत अवस्था से उसके लिए भी अयोग्य है, सब प्रकार से अयोग्य नहीं, इसलिए उनका हृदय कठिन कठोर है, और यदि कठोर नहीं रहता तो अंततः उद्धव जैसे उसका समर्थन तो करते ही, इसलिए उद्धव ने कहा कि भाई कृष्ण यहाँ पर से नहीं जाते तो अच्छा था, ये गोपियाँ इनके दिला में तड़प रही, अंततः सहानुभूति ब्रज के प्रति रहे, किंतु ब्रज भले ही उजड़ जाए कोई चिंता नहीं, चाहे पशु लोग कृष्ण के दिला में न खाएं और ये सब लोग तड़प पर के प्राण भी दे दें, किंतु कृष्ण को मथुरा हर हालत में ले जाना है, इसलिए कठिन हृदय के हैं। दया भी उनको नहीं। उसमें गोपियां रो रो करके रथ के नीचे गिर रही है, मोहित हो रही है, यशोदा जी रो रही है, किंतु इसका हृदय पिघला नहीं। ये भी यदि कहता जैसे अच्छा भाई वहां से होकर के खत्म, फिर ये आ जाएगा काम खत्म, इसलिए कठिन हृदय। और कंस ने इनको उपयुक्त व्यक्ति देख करके ये हमारे काम के ये लायक है, ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है, इनको खोज ढूंढ करके निकाला। तो जो ब्रज के जीवन कृष्ण है उनको आकर्षण करके ब्रज को सूखा बना दिया, ब्रज को शून्य बना दिया, अर्थात जीवन शून्य बना दिया। एकदम वहां पर कोई है कि नहीं है इसका भी, गाय घास नहीं खा रही है, ब्रजवासी लोग सब मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, स्त्रियों के विवाह दशा है, यशोदा मैया की तो दशा ही क्या। तो काफी उन्होंने उसी समय में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे कि कृष्ण ने उनको सब क्षमा कर दिया, और कृष्ण के कुछ प्रिय पात्र भी बने रहे। तो वो क्या वर्णन किया पीछे बताए। तो गोपियों के परम महत्व उनके मुख से निकल गया, इसीलिए उनका हृदय भी अंत में कुछ तरलीकृत हो गया। तरलीकृत माने
रंध्र में,
अंत में उन गोपियों के कृपा कटाक्ष से। इसलिए उनकी ये जो दृष्टता है उनको लोग क्षमा भक्तों कर देते हैं, नहीं तो क्षमा नहीं करते। इसलिए क्षमा किया कि गोपियों की थोड़ी सी महिमा उन्होंने वर्णन किया, इसलिए भक्त लोग कहते हैं खैर महिमा तो वर्णन किया, ब्रज से लाया भी, और एक विरह रस का उत्पादन इसी के द्वारा, वो यदि नहीं ले जाता तो ब्रज में विरह रस नहीं आता, इसलिए उनके देशों को भक्त लोग वर्णन नहीं करते। तो अभी इसी अपराध के कारण उनको द्वारका से कृष्ण से विरह में वहां से निकल जाना पड़ा, बहुत दिनों तक द्वारका से बाहर रहे। इसलिए अक्रूर में ये सब विरुद्ध भाव रहने पर भी निरह शुष्क अपराधी बूढ़े होने पर भी निरस ज्ञान वाले होने पर भी गोपियों की महिमा का जी उन्होंने वर्णन किया, इसलिए उनका हृदय ये इसी केवल भगवतियों की करुणा से, गोपियों की करुणा से ही ऐसा समझना होगा। संचिन्तयन् कृष्ण पदाम्बुजद्वयम् तस्य प्रकाशिताशयम् न्यवर्णयत् गोपी महोत्कर्षभरानुवर्णनैः सलोलितो भाष्टम् अवारयन् हृदि। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या वर्णन किया था गोपियों के मन में बतला रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं उनको यही बतलाने का मन है, उन्होंने क्या कहा था जिससे गोपियों की करुणा हो गई थोड़ी सी और उनका चित्त प्रेरित हो गया, ये वर्णन किया। यदर्चितम ब्रह्म भवादि भी सुरै श्रिया च दिव्या मुनि भी सशाश्वतै गोचारिणयां चरै चरत वने जद गोपिकानं कुच कुंकुमार्चितम यदर्चितम भव ब्रह्म भवादि सुरै। इस श्लोक में ये अक्रूर जी वर्णन कर रहे हैं कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, ये जिनके चरण कमलों की जद अर्चितम ब्रह्म भवादि भी, ब्रह्म माने ब्रह्मा और भव आदि माने भव माने शंकर इत्यादि जो देवता है, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कौन है, आदि सूरज ब्रह्मा एवं शंकर इत्यादि देवता, अर्थात देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा जी। जितने भी देवता इंद्र वरुण जम कुबेर इत्यादि सबके पितामह और ज्ञानी और भगवान के दास स्वरूप ये ब्रह्मा जी है। तो ये ब्रह्मा जी और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? शंकर जी। ये जिनके चरण हम लोग का सदा अर्चन करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, इसके द्वारा ये जो भगवान के जो चरण कमल हैं वो परम पूज्य हैं, देवताओं के भी परम पूज्य हैं, अर्थात वो स्वयं परमेश्वर स्वरूप हैं, उनके चरण कमल और परम देवत्व, देवताओं के भी देवता, सर्व कारण कारण स्वरूप कृष्ण के चरण कमल हैं। क्या आश्चर्य, श्रिया च दिव्या अर्थात श्री देवी अर्थात लक्ष्मी देवी के द्वारा भी उनके चरण कमलों की पूजा और अर्चना होती है। लक्ष्मी जी भी जिनके चरण कमलों की पूजा। अब ब्रह्मा से और शंकर से भी श्रेष्ठ है लक्ष्मी देवी, इनको देवी क्यों कहा गया? भगवती कहते देवी, इसलिए कहा ये देवियों में जो श्रेष्ठ है ये लक्ष्मी देवी और लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी दो हैं। नारायण के चरणों में सब समय के लिए जो सेवा करती हैं, अर्चन करती हैं, ये तो भगवती लक्ष्मी महालक्ष्मी जिनको कहते हैं, और जो देवी लक्ष्मी हैं ये उनके अंश कला हैं, जो धनदात्री हैं, ऐश्वर्य दात्री हैं, जगत में ब्रह्मा इत्यादि को ऐश्वर्य, शंकर जी को ऐश्वर्य, या जगत के लोग जो ऐश्वर्य चाहते हैं उनकी पूजा करने से उनको धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। यह है एक लक्ष्मी। अंतरस को जो पूजा होती है वो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वो उनकी अंश और कला है, वो ठीक महालक्ष्मी जी नहीं। तो लक्ष्मी भी जिनके चरण कमलों की पूजा करती हैं, मुनि भी ससाद पते और जो आत्माराम मुनिगण हैं, आत्मा में रमण करने वाले सनक नंदन सनक सनक कुमार इत्यादि भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। इसके द्वारा आप क्या कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, लक्ष्मी जी भी जिनके चरण कमलों की वंदना करती हैं, अर्चना करती हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी देवी के बाद में तब फिर आया है मुनि। मुनि लोग तो ये साधक हैं इस जगत में, तो लक्ष्मी ब्रह्मा जी शंकर जी इसके बाद में मुनि जन का नाम आया, तो फिर मुनियों से भी तो लक्ष्मी जी बदतर हो गई, कुछ कम हो गई, अर्थात लक्ष्मी जी भी श्रेष्ठ ये मुनि लोग हो गए। यहाँ पर इसलिए कहा है कि मुनि लोग माने आत्माराम मुनिगण जो हैं, संकसनंदन सनत कुमार, जो लक्ष्मी की भी अपेक्षा नहीं करते हैं। कौन लक्ष्मी? धन ऐश्वर्य इत्यादि को देने वाली, सिद्धि को देने वाली, ऐसे लक्ष्मी की जो नहीं चाहते हैं, वो आत्मा में रमण करने वाले हैं, ऐसे मुनिजन हैं मुनि लोग। तो इसके द्वारा हुआ जो उन मुनियों के भी, आत्माराम मुनियों के भी उपास्य हुए। लक्ष्मी जी परम सौभाग्य के सूचक है। जो आपको
ये चंचला लक्ष्मी जी है कि शंकर और गंगा निकृष्ट है क्या?
एक एक से उन्नत बतलाते हैं। लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की सेवा करती हैं, ये परम सौभाग्य की को प्राप्त होती है उनके चरणों से, इसलिए सौभाग्य का देने वाले भी उस चरण कमल को समझा जाए। और जब श्रीवा चौ दिव्या वो च लगा दिया, तो वहां पर समझना चाहिए महालक्ष्मी भी जिनके चरण कमलों को नारायण के रूप में उनके चरण कमलों की पूजा करती है। और मुनि भी सनक सनंदन पहले बतला आत्मा राम और च लगा देने से उसका और एक अर्थ निकाल लिया। नारद इत्यादि जो मुनि हैं शाश्वत है। शाश्वत माने जो परम भगवत भक्त उन्हीं लोगियों हैं, वो लोग जिनके चरण कमलों की नारद इत्यादि हम लोग जो उनके चरण की पूजा करते हैं, शाश्वत माने ही होता है शुद्ध भक्त। तो ऐसे मुनि लोग भगवान के चरण कमलों की पूजा करने के लिए योग्य नहीं है यदि भक्ति नहीं है। जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है ऐसे भक्तिमान मुनि जन ही जैसे नारद मुनि हैं। कभी कभी वशिष्ठ जी भी आ जाते हैं, वशिष्ठ मुनि, कभी कभी विश्वामित्र मुनि भी आ जाते हैं। ये लोग भक्ति के कारण से जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, ये लोग मुक्ति भी नहीं चाहते, मुक्ति को भी निरादर करने वाले हैं। ये लोग जिनके चरणों को की पूजा करते हैं, वो चरण कमल जो इन लोगों के लिए अर्चित हैं, गोचारण अनुचर तद बने चरत बने, वो श्री चरण कमल जो उनके अनुचर हैं, अनुचर माने सिद्धांत मधुमंगल अर्जुन लवंगल इत्यादि जो उनके साथ में बन बन में वो चरण विचरण करते हैं, इनके लिए नहीं कहा जैसे इन्होंने अर्चित किया, अर्चन किया, वहाँ तक तो अर्चन हुआ, सख्त भाव में अर्चन नहीं होता, वहाँ पर प्रेम बराबर का रहता है, उसी के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं। कहते हैं कि उन लोगों के जो उनके अनुचर हैं उन लोगों को आनंदित करने के लिए ही मानो कृष्ण गयों का बन बन में आज ये चारण करते हैं, दौड़ते हैं, वो खाली पैर दौड़ते हैं सखाओं के साथ। अब सखा लोग उनसे भी श्रेष्ठ हुए, उन मुनियों से भी और उन भक्तों से भी ये नाद इत्यादि से बहुत श्रेष्ठ हैं अनुचरगण। इसलिए कहते हैं उनके साथ उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान के श्री चरण कमल जो जो बनबन में विचरण करते हैं। जद गोपिका नाम कुछ कुंकुम अर्चितम, और जो श्री चरण कमल गोपिकाओं के कुछ कुंकुम से अनुरंजित हैं। तात्पर्य क्या है? कृष्ण के चरण कमलों की महिमा बतलाने के लिए गोपियों के साथ में, अनुचरों के साथ में, ब्रह्मा इत्यादि के साथ में उसको युक्त किया है। ब्रह्मा और भाव इनके चरण कमलों का अर्चन करते हैं तो सब कारण के कारण अर्चन करने जितने भी अर्चन सबसे मैंने श्रेष्ठ भगवान के चरण कमल ये बताया, सबके पूजनीय है, मुनि और भक्तों के भी पूजनीय है। यहाँ तक तो ठीक हुआ। और जो जिन उन्हीं चरण कमलों से उनकी महिमा क्या है, भक्त वश्यता हेतु ऐसे अनुचर जो भक्त कुमार हैं उनके भक्तों से वशीभूत होकर के उसी चरण कमल जो उनके सवारात में आज बनबन में विचरण कर, इसके द्वारा हुआ क्या, भक्ति वशीभूतता भी उनमें, भक्त वात्सल्य भी एक आया, भक्ति वात्सल्य के लिए ऐसा करते हैं तो उनके चरण कमल बड़े भक्ति वत्सल हैं। और जद गोपिकानं कुछ कुंकुमार्चितम, गोपिकाओं के कुछ कुंकुमों से जो अर्चित हैं, तात्पर्य क्या, ब्रह्मा इत्यादि उनका अर्चन करते हैं उनके चरणों के लिए, मुनि लोग भी और भक्त लोग भी अर्चन करते हैं। गोचारण के समय में सखा लोग भी उनके चरणों कमलों का अर्चन करते हैं, ये भी कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कृष्ण शयन कर जाते हैं उनके वहाँ पर गोदी में पैर रख करके और उन चरण कमलों को दबाते हैं, धूली के धूली को भी साफ करते हैं, वो सख भाव से दास भाव से नहीं वो कर देते हैं। किंतु वही चरण कमल गोपियों के अलंकार स्वरूप है एक तरह से, बस इतना ही, बल्कि उनके चरण ही अर्चन कर रहे हैं गोपियों के इस रूप में। उनके चरणों में वो कुछ कुमकुम लगाती हैं दो प्रकार से, अक्रूर जी हैं दास एक तरह से और बहुत निम्न, वो इतनी महिमा तक तो पहुंच नहीं सकते हैं मधुर रस के भाव में, इसलिए वो ऐसा भी कह सकते हैं कि वह यशोदा मैया है। और ब्रज की जो गोपिकाएं थी, प्रौढ़ा थी, कृष्ण को गोदी में लेते हुए खिलाते हुए और कृष्ण के चरण कमल वहां पर लग जाते हैं उनके कुमकुम, और वो कुमकुम जो लग जाते हैं कृष्ण के तो वो कुछ निर्माल्य जैसे हो जाते हैं। निर्माल्य माने क्या, जैसे ठाकुर जी को माला चढ़ाया, माला जब उतर गया तो उसको क्या करते हैं भक्त लोग, तो उनके आभूषण स्वरूप कृष्ण के चरण कमल उनके आभूषण स्वरूप निर्माल्य स्वरूप बने हुए हैं, अर्थात उनके चरण कमल ही उनकी अर्चन कर रहे हैं गोपियों की, ये भाव निकला रहे हैं। इसलिए कितनी बड़ी महिमा है वो गोपियों के लिए कृष्णचंद्र जी अर्चन कर रहे हैं, उनके चरण कमल अर्चन कर रहे हैं। अथवा अलंकार स्वरूप जैसे ठाकुर जी को अलंकार धारण कराया, तो अलंकार श्रेष्ठ है न अलंकार को जो धारण किए हुए है वो श्रेष्ठ है,
जो धारण करते
हैं गोपियों का वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के चरण कमलों को, इसलिए गोपियां यहाँ पर श्रेष्ठ होती हैं। और कृष्ण के चरण कमल को गौण बनाया और मुख्य बनाया उनको, और कृष्ण के चरण कमल गोपियों के कुमकुम रूपी निर्माल्य को धारण कर रहे हैं, वो चरण कमल जो सबके बंदे हैं। चरण कमल माने कृष्ण ही स्वयं, कृष्ण के चरण कमल में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए यदि जैसे कोई शिव जी का भस्म लगाता है निर्माल्य को, हम लोग तो नहीं लेते, ठाकुर जी का पुष्प उतरा हुआ, चरणामृत उतरा हुआ, या कोई कुमकुम राग इत्यादि जो अर्पित कर दिया जाता है, वो सब भक्त लोग ग्रहण करते हैं, उनका उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं। उसी तरह से वो निर्माल्य के रूप में कृष्ण के चरण कमल अर्थात स्वयं कृष्ण ही है वो, और वो ग्रहण कर रहे हैं क्या निर्माल्य स्वरूप उनके कुमकुम को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आज उनकी इतनी बड़ी भारी महिमा है ये।